माया महाठगिनी हम जानी, माया महाठगिनी हम जानी, निर्गुण फास लिए करे डोले, निर्गुण फास लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, माया महाठगिनी हम जानी, माया महाठगिनी हम जानी। केशव के कमला हुए बैठी, शिव के भवन भवानी भवानी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूर्ति होए बैठी, पंडा के मूर्ति होए बैठी, तीर्थ में भई पानी, माया महाठगिनी हम जानी, माया महाठगिनी हम जानी। जोगी के जोगिनी होए बैठे, जोगी के राजा के घर रानी रानी, राजा के घर रानी, काहू के हीरा होए बैठी, काहू के हीरा होए बैठी, काहू के कौड़ी कानी, माया महाठगिनी हम जानी, माया महाठगिनी हम जानी। भगतन के भगतिनी होए बैठी, भगतन के भगतिनी होए बैठी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी ब्रह्मानी, ब्रह्मा के ब्रह्मानी, कहत कबीर सुनो हो संत, कहत कबीर सुनो हो संत, यह सब अकथ कहानी, माया यह सब अकथ कहानी, माया महाठगिनी हम जानी, माया महाठगिनी हम जानी, माया महाठगिनी हम जानी।
ओम शांति। जंगल में जंगल का राजा एक वृक्ष के नीचे शेर सो रहा था आराम से, वहीं पर एक मच्छर बिनबिना रहा था उसके इर्द गिर्द। उसके नींद में बाधा व्यवधान उत्पन्न कर रहा था, और अचानक शेर की नींद खुल गई। शेर गुस्से में मच्छर से, तुमको दिखता नहीं हम सो रहे हैं इधर पे, और यहीं बिन बना रहे हो, तुम जानते नहीं हम कौन है, जंगल के राजा, और तुम इतने से छोटे से मच्छर और हमारे सामने बिन बना रहे हो, अभी दबोच देंगे तुमको। मच्छर को बड़ा अंदर आत्मग्लानि हुई कि हमारी इंसल्ट कर दिया। मच्छर भी गुस्से में आके गया वो भी अपने परिवार वालों के पास, सरदार के पास, मच्छर के सरदार, जाके ऐसा ऐसा बताया कि मच्छर की बरादरी की इंसल्ट कर दी है शेर ने। तो गया वो और उसने अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया मच्छर के सरदार ने, कि चलो अब शेर को भी देखते हैं, सबक सिखाते हैं। और गए सब सारे मच्छरों के झुंड शेर के पास। शेर से बोले, देखो आप तो राजा हो सही है, लेकिन हर एक वन प्राणी अपने आप में एक स्वाभिमान में जीता है, और आपने मच्छर का स्वाभिमान खत्म कर दिया, इंसल्ट की है, और ये गलत है। राजा का आप दायित्व तो सही तरीके से नहीं निभा रहे हो। तो शेर बोलता है, तुम इत्तु से मच्छर और हमारे सामने हिंकार दिखा रहे हो, अपना वो दिखा रहे हो। हाँ, मच्छरों को गुस्सा आ गया, मच्छरों को, उन्होंने कहा ठीक है, और जो शेर को काटना शुरू किया, मच्छरों ने, तो शेर हो गया परेशान, उधर से भागने लगा, लेकिन मच्छरों ने छोड़ा नहीं उसको। काटते काटते अंत समय ऐसा आया कि शेर ने मच्छरों से फिर माफी मांगी कि माफ कर दो, गलती हो गई, और फिर मच्छरों को दया आई तो छोड़ दिया। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बड़े तीरंदाज, बड़े बड़े सुरमा, बड़े बड़े तुर्रम खान भी छोटी छोटी चीजों से हार खा जाते हैं। तो आज का जो विषय है कि ब्राह्मण जीवन में माया के सूक्ष्म रूप, एक्चुअल में सूक्ष्म नहीं होते, होते तो बड़े हैं, लेकिन कभी कभी सूक्ष्म भी बड़े बड़े योगी को, बड़े बड़े सन्यासी को, बड़े बड़े त्यागी तपस्वी आत्माओं को भी ऐसा पछाड़ देते हैं कि समझ में नहीं आता है। 10 साल 20 साल चलने के बाद भी माया ऐसा बार करती है कि कहां लुप्त हो जाते हैं पता भी नहीं चलता है। तो माया के सूक्ष्म रूप कौन कौन से हैं? कौन कौन से हैं जो दिनचर्या में, जो प्रेजेंट में आते हैं? बड़े बड़े तो बहुत शायद ऊपरी तरीके से जीत लेते हैं, सूक्ष्म रूप जो हैं डेली हमको पछाड़ते रहते हैं, बहानेबाजी, टालने की आदत, आज नहीं कल, आज नहीं कल, अभी नहीं बाद में, टालने का कीड़ा भी सबके अंदर है, बहानेबाजी। तो दिनचर्या से शुरुआत करते हैं, जो ब्राह्मण जीवन की दिनचर्या है उसमें सूक्ष्म कहां से आते हैं? दिनचर्या से शुरुआत होती है अपनी अमृत वेले। तो अमृत वेले में कौन सी ऐसी सूक्ष्म माया आती है? बस 2 मिनट और, 2 मिनट के वजह कब घंटे बीत जाते हैं पता नहीं चलता। तो ये अमृत वेले में माया के सूक्ष्म रूप है ना। फिर उसके बाद होता है मुरली। मुरली में कैसे आती माया? लेट आना, और जो सुना रहा है कभी कभी उसके प्रति भी सम्मान थोड़ा कम हो जाना, और जो सुना रहा है उससे भी ज्यादा अपने आप को बुद्धिशाली या बुद्धिमान समझना। ये तो बहन है, नॉर्मल, मतलब कम वो है, मतलब रिस्पेक्ट रिगार्ड कम रखना। मतलब बाबा जो कहता है, टीचर का जो दायित्व तो होना चाहिए, जो उसके प्रति दृष्टिकोण होना चाहिए, वो नहीं रहता। जिसके कारण कहीं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा कि एक कमजोर विद्यार्थी है ना होशियार टीचर से सीख लेता है, लेकिन जो एक होशियार स्टूडेंट होता है वो कमजोर टीचर से भी सीख लेता है। तो हम अगर एक कमजोर विद्यार्थी जो होता है उसके लिए इंटेलिजेंट शिक्षक चाहिए, उससे से सीखेगा। लेकिन जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है वो एक कमजोर टीचर से भी सीख लेगा। शिक्षक अगर कमजोर है तो वो भी सीख लेगा। शास्त्रों में इसका एग्जाम्पल देखो तो साकार में एकलव्य के पास कोई गुरु नहीं था, लेकिन उसकी दृढ़ शक्ति कितनी थी एकलव्य की, कि उसने अर्जुन जैसे धनुर्धर को भी पीछे छोड़ दिया था। क्योंकि गुरु नहीं था उसके पास, इसके कारण उसको गुरु की आज्ञा के बगैर उसने किया, इसका कारण उसको फिर भी इतिहास में उसका नाम है। तो दूसरी है कि सूक्ष्म रूप से या तो नींद भी आना, उसमें एक्टिव अलग अलग तरीके से नहीं सुनना। मुरली वही आज से 10 साल पहले जो तरीका था डायरी में नोट करने का, तरीका वही है। तो कहीं ना कहीं रूढ़ी बारी चल दिनचर्या भी होती है हमारे, कि जो पुराना चलता आ रहा उसी अनुसार। जबकि आज देखे तो एक सिंपल से फोन भी है तो वो 7 दिन में अपडेट होता है। अभी आप सोचो कि 10 साल पुराने फोन में और अभी के फोन में आप फोटो खींचोगे तो किस में क्लैरिटी ज्यादा होगी, किस में क्लैरिटी, क्योंकि हमने अपडेट नहीं किया ना। हर अगर दुनिया में देखो सफल व्यक्तियों को तो वो उनमें 3 चीजें कॉमन होती हैं। कौन कौन सी 3 चीज हर सफल व्यक्ति की कॉमन होंगी? और तो उसमें कहते हैं कि WWL, ये 3 कॉमन फैक्टर हैं हर सफल व्यक्ति में। RWL, रीड राइट लर्न, वो पढ़ते रहते हैं निरंतर, वो पढ़ते हैं अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं। और राइट, हर दिन दिनचर्या की डायरी जरूर मेंटेन करते हैं। और लर्न, नई नई चीजें सीखते रहते हैं। बाबा अगर सारी चीजें ओपनली बता दे तो सारे बच्चे बहुत कम समय में मंजिल को हासिल हो जाएंगे। बाबा भी चतुर सुजान है, वो कहता है कि मुझे भी 1,00,000 तख्त बनाने पड़ेंगे, मेहनत बढ़ जाएगी। इसलिए बाबा बहुत सारी चीजें गुप्त है। अगर मुरली की आप एक मुरली को अच्छे से पढ़े और साइंस, पूरा मुरली में पूरा साइंस समाया हुआ है। बाबा जो चार्ट रखने कहता है, उससे चार्ट रखने से क्या क्या फायदे होते हैं, शायद बाबा ने पूरे खुल के नहीं बताता बाबा कभी, लेकिन अगर आप उसकी गहराई में चिंतन करो तो बहुत सारे फायदे हैं चार्ट रखने से। क्या फायदे? ढेर सारे फायदे हैं। सिर्फ चार्ट रखने से ही हमारी दिनचर्या परफेक्ट हो जाएगी, हम एक्यूरेट हो जाएंगे। स्थूल ही, ये तो स्थूल बात हुई, सूक्ष्म क्या क्या चीजें होती है चार्ट रखने से। अपने अंदर जो कमियां हैं वो पता चलती हैं पहले तो, और जब तक व्यक्ति को अपनी कमियां पता नहीं चलेंगी वो निकालेगा कैसे। हमारा शत्रु सामने से कितना बलवान है, जब तक हम नहीं जानेंगे तब तक हम कैसे अपने को तैयार करेंगे, तो वो हमारी कमियां पता चलती हैं। और एक और चीज होती है, मेमोराइज करते हो आप दिन भर में क्या किया, मतलब अपने वर्त पीछे गुजरे हुए पल में क्या क्या गलतियां की वो नोट करते हैं, तो मेमोराइज पावर बढ़ती है चार्ट रखने से। नवीनता आती है, आपको बहुत सारी कमियां ऐसी पता चलेंगी जो आपको खुद महसूस नहीं होंगी कि आज जे गलती कर ली। और आप समय का टेंशन दोगे कि आज कितना हमने खत्म कर दिया समय, कितना खर्च कर लिया, है ना। और क्या होगा, बहुत सारी बातें हैं उसमें। लक्ष्य आपको याद रहेगा, लक्ष्य, बाबा ने कहा कि लक्ष्य याद रहने से, लक्ष्य स्मृति में आने से क्या होगा, लक्षण स्वतः आते लगेंगे। और ब्राह्मण जीवन में चलते चलते यही तो गोलगप्पा हो जाता है कि लक्ष्य ही गायब हो जाता है, दशा बदल जाती है ना। आए थे हरि भजन करने को, ओटन लगे कपास, मतलब जो चीज करनी थी वो चीज नहीं, क्योंकि भूल जाते हैं। तो ये कहाँ थे, मुरली में थे। सेकेंड विषय वो हो जाता है, बदल जाता है। तो तीसरा है फिर प्रवेश करते हैं कुरुक्षेत्र में। असली तो उधर होता है, मुरली तक तो ठीक है, खुद से युद्ध चलता है ना। बाहर है जो कुरुक्षेत्र सेवा के फील्ड में जब उतरते हैं, असली परीक्षण उधर होता है। सारे अस्त्र शस्त्र सब यूज करना पड़ता है। अगर ब्रह्मास्त्र नहीं है आपके पास तो फिर हार हो जाती है, और कभी हारते हैं कभी जीतते हैं। सेवा के क्षेत्र में कौन कौन से सूक्ष्म माया के रूप आते हैं, उधर तो विशाल भी आते हैं बड़े बड़े। पहले तो संस्कारों का टकराव, मुरली तो वहीं रह गई, हाल से सुन के गए बस खत्म, अब कारोबार शुरू। तो पहला उसमें होता है संस्कारों का टकराव, विभिन्न विभिन्न लोगों से मिलेंगे, विभिन्न विभिन्न संस्कार वाले लोग आएंगे, कहीं हार भी होती है कहीं जीत भी होती है। और सबसे बड़ी हार तब होती है जब हमें ज्ञान विस्मृत हो जाता है, जो सुना है जो किया है वो विस्मृत हो जाता है, तो हार हो जाती है। और क्या होता है, दूसरों की कमियां देखने लगती हैं, है ना, अटेंशन नहीं रहता है। जो बाबा कहता है शायद एक घंटे बैठकर योग करना आसान है, लेकिन एक घंटे में एक मिनट का टाइम निकालना मुश्किल है ना। सबका अनुभव होगा कि आज तक अगर 12 घंटे में एक एक घंटे में हमने एक मिनट ड्रिल का भी नहीं की होगी रेगुलर, कहीं ना कहीं में सो ही जाता है, या हो भी जाता है जब होता है जब हम पूरा टेंशन रखते हैं। लेकिन सेवाओं में इतना भूल हो ही जाती है, कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो शायद एक घंटे बैठ के आपका योग करना बहुत आसान भी होता होगा, दृढ़ता से कर भी लेते होंगे, लेकिन आप एक घंटे में एक मिनट योग करना, जो बाबा कहता है ना ड्रिल करना, बार बार ऊपर जाना, वो मुश्किल हो जाता है। तो ये सूक्ष्म है। हम मोटे रूप से तो बहुत भट्टी अगर कोई बोले दिन भर की तो कर लोगे, लेकिन दिन भर में बीच बीच में योग करना, अटेंशन में लाना अपने आप को, वो कठिन है। और इसको अपन हल्का समझ लेते हैं, जबकि यही सूक्ष्म माया है। क्योंकि छोटे छोटे संकल्पों से जीत हासिल करने से ही बड़ी जीत होगी। हाथी को सामने से कोई, हाथी को शेर भी शायद सामने से नहीं हरा पाता है ना, लेकिन चींटी उसको पछाड़ देती। तो ऐसे योगी जीवन में भी शायद हमने बड़े बड़े त्याग तो कर लिए हैं, लेकिन छोटे छोटे जो सूक्ष्म अपनी कमी कमजोरी अंदर की, वो ही अपन को पछाड़ दें। गाना सुना ना, पंडा को कौन ठगता है, पंडा किसको, पंडा के घर में मूर्ति और पानी है ना, योगी के घर में जोगिन और राजा के घर में रानी। तो इर्द गिर्द तो माया बैठ ही है हमारे, और वास्तव में हम अपनी कमजोरी से ज्यादा हारते हैं, बाहर की परिस्थितियों से बहुत कम। जो हमारी कमजोरी है, अंदर के संस्कार हैं, उनसे ज्यादा हार होती है, हमारी खुद से खुद ही की हार ज्यादा होती है। फिर अगला है, इसके पहले तो मुरली के बाद था, कुरुक्षेत्र का हो और सेवा का क्षेत्र का हो, वही कुरुक्षेत्र है। तो अगला है भोजन। भोजन को भी कभी कभी साधारण समझ लेते हैं, जबकि बाबा ने भोजन के लिए, शायद हमने पहली बार इतना बाबा भोजन के लिए जितना बोला है मुरलियों में, कि भोजन पे बहुत अटेंशन देना है। क्योंकि जैसे आत्मा का भोजन है संकल्प, शुद्ध संकल्प मुरली है ना, वैसे ही हम हमारे खाने में कितना मौन है हमारे खाने में, और यहीं तो बहुत खाने के समय भी बहुत हार होती है। खाने के लिए भी बाबा ने बहुत गुप्त युक्तियां बताई हैं, गुप्त रहस्य हैं उसके भी। जैसे उस दिन रामबाई ने बताया ना कि दूसरी बार जब भोजन लेते हैं तो ये गहरी बात ये समझ में आती है कि एक बार भोजन लिया आपने है ना, फिर बाबा की याद में खाया, ठीक है, अगर फिर दूसरी बार भोजन लिया तो फिर तो बाबा की याद तो करते ही नहीं है। कहीं पे किसी बुक में हमने पढ़ा था कि देवताओं का भोजन एक ही बार लेते हैं, देवता भोजन एक ही बार, क्योंकि वो देवता ही नहीं है जिसको अपनी भूख का पता नहीं कि हम कितना लेते। बार बार थाली ले जाना वो भी रॉयलिटी नहीं है, तो एक ही बार भोजन लेना चाहिए। और भले कितना भी स्वादिष्ट बाद में पकवान आ जाए, हमारी आसक्ति वही परीक्षण होता है। इसलिए पता चले एक बार भोजन लिया और पता चला कि उधर कुछ और आ गया आइटम और भागे फिर लेने, तो वो बिल्कुल भी वो याद है ही नहीं। आपने भोजन जो लिया उसमें बिल्कुल भी भगवान की याद नहीं है। तो ये भी अपन उसको मोटे रूप से देखते हैं, चलो आज भूल गए कल, और जबकि छोटी छोटी चीजों में कितने कल गुजर गए होंगे। हमारा खुद का अनुभव है कि कितने कल तो छोड़ो वर्षों बीत गए होंगे। शुरुआत तो की लेकिन 100% एंड नहीं हुआ होगा खाते समय, या कोई बीच में कोई अच्छी चीज लेके आ गया कि भाई ये ले लो, तो वो भी खंडन है, योग में बाधा है। तो खाने में, खाने को शायद हम इजी समझ लेते हैं, या कोई न्यूज कोई बात करते हुए, या कोई सेवा समाचार कुछ भी करते हुए अगर आप खाना खा रहे हैं, अगर जरूरी है तो उतने समय स्टॉप कर दो, और जब भी स्टार्ट करो तो फिर बाबा की याद। ये नहीं कि खाना भी खा रहे हैं बात भी कर रहे हैं, जरूरी है कोई फोन आ गया, कोई सेवा का है, कुछ कोई कुछ पूछ रहा है, जब जरूरी है तो ठीक है, नहीं तो कोई जबरदस्ती आके, वहां भी माया परीक्षा लेती है, जबरदस्ती आके अब कोई पूछेगा कि कुछ भी पूछ सकता है, तो उधर से अपने को युक्ति युक्त किनारा भी करना पड़ता है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं, खाना किस उससे खा रहे हो बहुत इफेक्ट करता है वो। फिर अगली, अगला क्या है दिनचर्या में? मतलब जो भोजन का तो हो गया, अगला नेक्स्ट क्या आता है हमारा? सेवा भी हो गई दिनचर्या में, है ना, रेस्ट भी हो गया, रेस्ट रेस्ट में माया। तो सोते समय कभी कभी जब सेवाओं से हम फारिग होते हैं और फ्री टाइम मिलता है, तो फ्री टाइम कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि फ्री टाइम में आप कुछ कर लें, कभी कभी मोबाइल में गुजार देते हैं, नींद पूरी नहीं लेते हैं, है ना, नींद पूरी नहीं लेते, अरे सेवाओं में बिजी रहते तो अब थोड़ा चेक कर लें नोटिफिकेशन, या सोचते हैं कि चलो मुरली पढ़ लें। लेकिन कभी भी मुरली पढ़ते समय हम इंटरनेट ऑन किए हैं मोबाइल में अगर पढ़ रहे हैं, है ना, कोई भी चीज अगर दूसरी चीज चालू की है तो शुरू तो करते हैं मोबाइल को कि मुरली पढ़ने से, लेकिन कोई आ जाता है नोटिफिकेशन तो कहाँ पहुंच जाते हैं पता भी नहीं चलता है। तो ये भी थोड़ा अटेंशन कि जब मुरली पढ़ें और भोजन करें वो तो अलग है, अपने को डिस्कनेक्ट करना है, इंटरनेट को भी डिस्कनेक्ट करना है। मुरली पढ़ना है तो सबसे पहले एकांत ढूंढ लो, एकांत के साथ मोबाइल जरूरी है तो ठीक है, नहीं तो फ्लाइट मोड में होना चाहिए, क्योंकि हम अपने कर्तव्य और हम अपने उसको भूल गए हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे ज्ञान, हमारी स्थिति। आप सेवा कितनी भी कर लो उससे कोई फर्क नहीं है अगर स्थिति डमाडोल हो गई तो सबसे पहले हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि सेवा तो ऑटोमेटिक होगी, ज्ञान योग के प्रति हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन ये दो चीजें हमारी नहीं छूटनी चाहिए, ज्ञान और योग, क्योंकि इसके लिए आपको कोई नहीं बोलेगा। सेवा अगर 5 मिनट भी लेट हुए तो आपको बहुत कुछ सुनना पड़ सकता है ना। तो सेवा तो आपको जबरदस्ती करनी ही, करा ही लेंगे, बाबा करा ही लेगा किसी न किसी के थ्रू। और ब्राह्मण जीवन में ज्ञान योग सेवा के अलावा है ही क्या, एंजॉयमेंट तो सेवा ही में है ना, वो तो रिजल्ट है, सेवा एक्चुअल में रिजल्ट है हमारे ज्ञान योग की धारणा की कि हम क्या है। तो उसके बाद है नमासाम, अगर ये सारी चीजें ठीक रही तो नौवां शाम में आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। और अगर दिनचर्या नौवा शाम के पहले के 2 घंटे परफेक्ट नहीं गुजरे, कुछ भी हुआ ऊपर नीचे, तो पूरा डिफेक्ट हो जाएगा नौवा शाम, फिर युद्ध में ही गुजरेगा, भले बैठे रहेंगे लेकिन भगवान इतना कल्याणकारी है कि अगर आप जबरदस्ती भी करते हो तो उसका भी वो रिटर्न देता है। पता चलता है कि आप 2 घंटे बैठे रहे, 1 घंटे बैठे रहे, 59 मिनट तक आपको कुछ अनुभव ना हो, लेकिन एक मिनट वो अनुभव आपको करा दे कि सारा रिजल्ट आपका वापस हो जाए। तो ये नौवां शाम में माया। अब इसके बाद है जो लास्ट और बहुत बड़ी माया है, ये तो माया के रूप देख रहे हैं, अभी इनके अपन सुधार के लिए क्या है प्रयोजन तो वो बाद में देखेंगे। तो क्या है, रात को सोने से पहले अकेली ही चिंतन हो। अगर ज्यादा लोगों के साथ और ज्यादा चिंतन और ज्यादा ज्ञान की चर्चा हो गई तो घातक हो जाता है, नींद में डिस्टर्बेंस आ जाता है, क्योंकि चिंतन की धारा अगर मन में शुरू हो गई एक बार तो फिर मन नींद में खलन डाल देगा। कभी कभी हाइपर हो जाता है चिंतन, अगर क्योंकि चिंतन में भी रस है, चिंतन में ऐसा रस है कि आपकी नींद क्या सब कुछ फट जाएगा। हाँ, लेकिन चिंतन इतना ज्यादा गहराई से नहीं, मतलब एकांत में अकेले में होना चाहिए, अकेले का। ग्रुप में 2-4 लोग बैठ गए तो वो चिंतन करते करते कहीं और भी पहुंच जाते हैं ना। तो बाबा ने सोने की विधि बताई कि लास्ट में अपना जो दिनचर्या का पोता मेल है वो बाबा को क्लियर बुद्धि खाली बुद्धि होके दे दो, तो आप और दिनचर्या में जो भी किसी ने आपके साथ कुछ किया तो उनको माफ कर दो, है ना। तो बाबा ने कहा कि तुम अगर सबको सबके साथ एक इंसाफ करो कि सबको माफ करो, तो तुम सोने से पहले सबको माफ कर दोगे तो तुम्हारे जागने से पहले हम तुमको माफ कर देंगे। तो माफी मांग लो, माफ कर दो और माफी मांग लो। माफी तो जब गलती आपको तुरंत एहसास हो ना तो तुरंत ही मांग लो, व्यक्ति से तुरंत ही माफी मांग लोगे ना तो आपको ज्यादा देर नहीं चलेगा, और अगर नहीं माफी मांगी आपने तो लंबे लंबे काल तक चलता रहेगा। अब खुद का अनुभव है कि किसी व्यक्ति के साथ हमने बहुत कुछ किया था तो बहुत साल बाद 10 साल बाद माफी मांगी, लेकिन जब तक माफी नहीं मांगी थी लेकिन वो कांटा चुभता था, कांटे के जैसा होता है। अगर हमने कोई गलती कर दी किसी से तो वो कांटे के जैसा हो जाता है अंदर, वो कांटा अगर एक बार शरीर में गया तो अगर उसको तुरंत नहीं निकालते तो क्या होता है, ऑपरेशन करना पड़ता है। एक बार क्या हुआ कि दरी लौकिक में भाई था एक हमारा, तो उसको पैर में कांटा लगा और ध्यान नहीं था, वो कांटे का असर नहीं हुआ, लेकिन बहुत बाद में उसको दर्द शुरू हो गया पैर में, लेकिन वो फॉल्ट किसी को नहीं मिल रहा था, नीचे देख रहे थे कि पैर में कांटा लगा था, दर्द वहां होता तो उसको फॉल्ट कहीं नहीं मिला, बहुत डॉक्टर के पास। तो बाद में पता चला कि कांटा पेट से निकला, पैर से गया पेट में निकला, इतना गहरा चला गया तो हर डॉक्टर इधर तक पैर तक ही चेक करते थे, थोड़ा ऊपर तक। हाँ, तो अब कुछ भी हो सकता है, कोई वो नहीं है कि हाँ पेट में भी लग सकता है कि अब, लेकिन कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा होता है कि लंबे समय तक टालना नहीं चाहिए, अगर समझ में आता है कि गलती है हमारी तो उधर पे। और गलती बाबा ने इतना अच्छा बताया कि अहंकार को, हमारा जो झुकना ही अहंकार को खत्म करेगा। आज बाबा ने कहा ना हम वरदान में कि स्वाहा करना है अपनेपन को, पुरानेपन को, ये भी इससे ही हमारा सेकंड संकल्प और कर्म बोल इसी से हमारे क्या होंगे, श्रेष्ठ वाइब्रेशन देहाभिमान को खत्म स्वाहा करने से आएंगे। तो बाबा ये तरीका है युक्ति, सेवा तो एक बहाना है, बाकी उसको तो हमें यही देवता बनाना है ना। तो वो अपन को लगता है कि वहां बनेंगे, नहीं, बाबा को यही सब कुछ देना है। अतीन्द्र सुख तो ब्राह्मण जीवन में है ना, चीनी के पहाड़ में चीटी रहेगी तो उसको चीनी की वो नहीं रहेगी, उतनी वैल्यू नहीं रहेगी है ना। वैल्यू तो इधर है जहां दुख की दुनिया और हम सुख में रहे, तो कितना मजा है, आनंद है। तो ये कुछ बातें हुई इसकी। अब हमको करना क्या है, भगवान मिलने के बाद अगर हम भी साधारण जीवन साधारण लोगों की तरह जी रहे तो हमारे ऐसे जीवन में धिक्कार है। भगवान को पाके और हमने अगर वो जो सब कुछ देने आया है वो सब नहीं पाया, तो बाबा ने आज की मुरली में कहा है, भगवान का फरमान है, क्या है, बाप का फरमान मतलब रिगार्ड, बाप का रिगार्ड मतलब फरमान को मानना, और उसका फरमान है पढ़ाई। बाबा ने कहा पढ़ाई पढ़नी, बाबा ने कहा कि गाने नहीं सुनने, कभी कभी तो बाबा कहता है गाने सुनने, कभी कहता है गाने नहीं सुनने, तुम्हारे लिए नहीं है। तो सूक्ष्म माया ये भी है, हाँ इससे भी ये चीज है कि कभी कभी एक्चुअल में गाना सुनना योग की अवस्था तो है ही नहीं ना। कभी कभी ऐसा होता है मेडिटेशन हॉल में भी देखा होगा, कोई हेडफोन लगा के सुन रहा है गाने, अभी उधर अलग चल रहा है म्यूजिक और खुद अपना अलग चल रहा है, और उसको खुद पता नहीं कि चार पांच लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, इतना तेज आवाज हो रहा है। तो वो भी सूक्ष्म में किसी को डिस्टर्ब करके और खुद योग करना, मतलब वो तो अपन को सोचना है वो तो हर व्यक्ति अलग अलग सोच ले तो वो बात अलग है, लेकिन लेकिन मुड़ मुड़ के तो देखते हैं ना लोग। लेकिन हाँ नए करें तो बात अलग है पता भी नहीं रहता, कभी कभी हेडफोन लगा भी रहता है और ओपन साउंड चलता है तो वो बात अलग है। तो ब्राह्मण बनने के बाद अगर हमारा लक्ष्य ऊंचा नहीं रहा तो बड़ी दुविधा है। तो इसमें कुछ बातें हैं, पहले तो हमें कुछ चीजें करनी है। ऑटो पायलट मोड पहला है, ऑटो पायलट मोड में पुरुषार्थ हो। पुरुषार्थ के लिए मेहनत हम ना करें, जैसे पायलट को कहीं इमरजेंसी में जाना होता है तो वो एक ऑप्शन रहता है फ्लाइट में कि ऑटो पायलट मोड में डाल देते हैं तो फ्लाइट ऑटोमेटिक चलता है। ऐसा ही हमारा पुरुषार्थ जो हो ना, वो अमृत वेले हमें उठने का पुरुषार्थ ना करना पड़े, आंख खुद खुल जाए, उसके लिए ज्यादा संकल्प चलाने की जरूरत नहीं पड़े। जैसे योग में बैठे हैं और हमें चिंतन ज्यादा ना करना पड़े और एकाग्रता और एक ही बाप की याद में एक ही बीज रूप अवस्था में एक ही बिंदु में टिक जाए, ज्यादा ज्ञान की अवस्था नहीं। और कहते हैं कि ज्ञान आधार है, जैसे फ्लाइट जब रनवे में होता है, रनवे आधार है उसका, उसको छोड़ना पड़ता है उड़ने के लिए। ऐसे ही हमें पुरुषार्थ जीवन में बहुत सारी चीजें छोड़नी है। पहले पहले शुरुआत में तो हमें जरूरत है उन चीजों की बहुत ज्यादा, ज्ञानी और योगी आत्माओं की जरूरत है, संगठन की जरूरत है, लेकिन धीरे धीरे बंधन भी बन जाता है उन्हीं चीजों में, बंधन भी बन जाता है तो उसको हमको छोड़ना है तब हम उड़ पाएंगे। सूक्ष्म बन जाता है, जैसे संगठन में बैठते हैं तो फिर लौकिकता भी आ जाती है, बाहर चलें पिकनिक जा रहे हैं, संगठन बनाया था ज्ञान योग के लिए लेकिन बाकी और चीज भी चालू हो जाती है तो वो भी विघन हो जाता है। तो हर चीज का हमें ध्यान देते हुए उसमें अलर्ट रहना है कि कितना हमको किसी चीज में जाना है, कहीं इतने तो नहीं चलेगा कि फंस गए उसी में। सो सहयोग सपोर्ट लेना है। दूसरा है बी, बाउंस बैक। इस जीवन में ब्राह्मण जीवन में हार जीत तो होगी, गिरेंगे उठेंगे, लेकिन दिल से कष्ट नहीं होना है। चाहे तुमने 1000 गलतियां मिस्टेक कर दी हो, लेकिन फिर उठ खड़े होना है, बाउंस बैक करना है, डरना नहीं है, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप है। दुनिया में देखो एल्वा एडिशन 1000 बार फेल हो गए, फिर भी कितना पॉजिटिव। अगर वो हिम्मत हार जाते तो आज लाइट हम देख पाते। और अपनी को ये सोचना है कि हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई विशेषता है, ये जरूरी नहीं है। सार्क जो मछली होती है समुद्र में, उसमें अपनी विशेषता है। अब कोई उड़ने वाला पंछी समुद्र में तैर नहीं सकता अच्छे से, सार्क अच्छे से तैर सकते है ना। अब जैसे एक हीरो है तो वो अच्छी एक्टिंग कर सकता है, हीरो का पार्ट बजा सकता है। अब उसको विलन का रोल दे दो तो जमेगा नहीं, वो विलन का रोल जो है, जो विलन करता है उसको हीरो का रोल नहीं जमेगा। तो हर व्यक्ति की एक वैल्यू है अपने अपने क्षेत्र में। एक डॉक्टर है जो अच्छा डॉक्टर वो कुछ और नहीं बन सकता है ना, डॉक्टरी का प्रोफेशन। अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकता है ना, और जो इंजीनियर है वो डॉक्टर का काम नहीं कर सकता। तो सबके अपने अपने प्रोफेशन में। अब एक कोई अच्छा आर्टिस्ट है, चित्रकार है तो अच्छा हाँ सिंगर नहीं बन सकता। तो सबके अंदर विशेषता है। और तो बाउंस बैक ये करना है कि हिम्मत नहीं हारनी है। और दुनिया में अगर देखें तो जिन लोगों के साथ ज्यादा परिस्थितियां आई हैं उन्होंने कुछ किया है। कभी कभी परिस्थितियां आती है, इसमें चलते चलते तो सोचते हैं ब्राह्मण होके भी ऐसा होता है क्या, संशय मतलब उत्पन्न नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारे अंदर जितना इन्फॉर्मेशन होगा, जितने सफल लोगों की जीवन कहानियां स्पष्ट होंगी तो मजा आएगा। सोचो एक बार क्या हुआ, फ्रैंकलिन डोनाल्ड रूजवेल्ट 32वें राष्ट्रपति अमेरिका के, तो उस समय 1933 से 90, वो पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जो 4 बार लगातार राष्ट्रपति बने। और 1933 से 45 तक थे वो, और उसी में 1939 में शायद सेकेंड विश्वयुद्ध हुआ था, आर्थिक मंदी में चला गया था अमेरिका। और उसी समय फिर चीन ने हमला किया था अमेरिका के ऊपर, तो रूजवेल्ट ने, जब हमला हुआ अमेरिका के ऊपर तो रूजवेल्ट ने तुरंत अपनी एयरफोर्स को बुलाया व्हाइट हाउस में, तुरंत उनके साथ मीटिंग की और उनने कहा कि हमको कल ही हमला करना है, अपने हमले का बदला तुरंत लेना है। तो उन लोग बोले कि ये तो हो ही नहीं सकता, संभव है, और हमारे पास इतने फाइटर प्लेन हैं, लेकिन हमारे पास इतना ईंधन नहीं है, फ्यूल नहीं है, फ्यूल की कमी है। तो बोले असंभव कुछ भी नहीं है, हमको करना ही है। और कहते हैं कि फ्रैंकलिन डोनाल्ड रूजवेल्ट उसी समय खड़े हो गए, बोले करना ही है। खड़े हो गए तो सब लोग परेशान हो गए, क्योंकि रूजवेल्ट विकलांग थे, व्हीलचेयर में 60 साल तक, और 60 साल का व्यक्ति खड़ा हो गया तो सब परेशान हो गए। वो और फिर वो बोले कि जब ये संभव है तो दुनिया की कोई भी चीज असंभव नहीं है, मुझे कल हमला करनी है। और फिर कमांडर जो उनके सीनियर होते हैं तो उनने बोला ठीक है आप बैठिए पहले, हम करेंगे कल कुछ करेंगे। तो फ्यूल होता नहीं है, फिर भी 11 लड़ाकू विमान को भेजते हैं वो, है ना, भेज देते हैं। बोले हम उनको जिनको बिठाते हैं फाइटर प्लान में उनको बता देते हैं कि टेंशन नहीं लेना, फ्यूल रखा है, टैंकर रख देते हैं दिखाने के लिए। और जब उड़ते रहते हैं वो पहुंच जाते हैं उधर पे जहां उनको जाना था टारगेट में, तो तब सबको दिखता है कि कांटा रेड हो गया, वो तो फ्यूल खत्म हो गया। और फिर देखते हैं कंटेनर जो रखा है कि फ्यूल तो है ही नहीं उसमें, सब आपस में कम्युनिकेशन करते हैं कि फ्यूल तो है ही नहीं। तब उन लोगों को समझ में आता है कि हमको क्यों भेजा गया है। बोले अब तो मरना ही है इसलिए कुछ करके ही मरो। और उन्होंने कहीं फ्लाइट ऐसी ऐसी जगह जहां पर उनके हानि हो जाए, उनके उनका नुकसान हो गया, जिस जहां आक्रमण करना था तो उनको फाइटर प्लान को कहीं बिल्डिंगों में घुसा दिया, कहीं कुछ कर दिया, वो बताते ही युद्ध में ऐसा हुआ। वो तब से डरने लगा अमेरिका से, तभी से अमेरिका से हर देश डरने लगा, क्योंकि वो एक्शन बहुत फास्ट लेता है रिजवेल्ट के कारण, उस डिसीजन के कारण। आज भी उसके डिसीजन जो लिए उधर पे व्हाइट हाउस में उसका अलग से बनाया है। तो ये साधारण व्यक्ति है ना, इनके निर्णय जब दुनिया का इतिहास बदल सकते हैं, हम तो विश्व के रचयिता इतिहास के रचनाकार हैं। कहते हैं ना कि जो इतिहास बनाते हैं वो इतिहास रटते नहीं हैं, इतिहास रचते हैं वो। जो विकलांग व्यक्ति जब इतना निर्णय लेके और वो कर सकता है, तो हमारे तो हाथ पैर हैं। पहले तो भगवान को धन्यवाद दें, हाथ पैर हैं, देखने के लिए आंखें हैं, है ना, सुनने के लिए कान सही हैं, आंखें हैं, सब सही है, सब एक्यूरेट है। नहीं तो दुनिया में देखो, अरुण में सेना एक पैर नहीं, हिमालय फतेह कर लिया, है ना, कितने एग्जाम्पल हैं दुनिया में। उनको देख के भी हमारा खून गर्म नहीं होता, तो फिर और हम भी माया से पछाड़ते रहे। बाबा का बन गए मतलब, बन गए मतलब उखरी में से डाल ही दिया है। अब हमें इधर कंफर्ट जोन नहीं ढूंढना है कि आगे क्या होगा, आज ये क्या होगा। जब तुमको फ्लाइट में बिठा दिया, एक एड्रेस तुम्हारा फिक्स है, ये एड्रेस नहीं, एक एड्रेस तो हमारा फिक्स है, शमशान घाट का, है ना। उसने रिटर्न टिकट के साथ भेजा ही है हमको, और हमारा फ्यूल कब तक चलना है ना, फ्यूल खत्म हो गया और फिर भी हम रिक्शा ना लें। इस ब्राह्मण जीवन में रिक्शा बहुत जरूरी, बिना रिक्शा के कोई आगे नहीं बढ़ा है दुनिया में। अगर देखो फ्लाइट जिसने निर्माण किया, एरोप्लेन बनाया, वो सोचता कि अगर नीचे गिर गया तो क्या होगा, तो फ्लाइट बन पाते। शिप बनाई जिसने, अगर वो सोचता कि समुद्र में मैं डूब गया तो क्या होता, तो बना पाता। डू वन थिंग्स पे काम करना है, एक ही लक्ष्य हो, एक ही नजर हो, एकलव्य की तरह हो, अर्जुन की तरह हो, चिड़िया की आंख देखती रहे, लक्ष्य देखता रहे, गोल हमारे गोल इर्द गिर्द घूमता रहे, गोल गोल कि हम ब्राह्मण किस लिए बने। और भगवान को पाके अगर हमारे साधारण पद पा लिया, तो हमारे जैसा चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए हमको। भगवान को पाके अगर हमारा लक्ष्य ही छोटा है ना, तो हमको फिर तो दुनिया के लोग जिनको भगवान नहीं पढ़ाता, वो अपने लक्ष्य के लिए कितना कर गुजरते हैं। एक आईएएस की तैयारी के लिए लोग 18-18 घंटे ना नींद देखते हैं ना चैन देखते हैं, है ना, सिर्फ एक जन्म की पोजीशन पाने के लिए। तुमको 21 जन्मों का वर्षा पाना है, और इधर चिंता है कि नींद पूरी कर लो, ये कर लो, वो कर लो। और जिसको लक्ष्य दिखता है ना, लक्ष्य सामने, उसके लिए जुनून चाहिए। जुनून ऐसा हो बिल्कुल, लगन ऐसी लग जाए कि सब कुछ फिट जाए, नींद चैन सब आराम, कहाँ आराम, हराम है। बाबा ने कहा था 2 अप्रैल 2020 की मूल्य में, सर्वसेवल बच्चों को आराम हराम है। किसी मूल्य में बाबा ने कहा था 13 नवंबर 2019 की, बच्चे आए तो हैं नर से नारायण बनने और नारी से लक्ष्मी बनने, लेकिन चलन तो देखो। गांव के बच्चे को बोल दो कि स्कूल जा, तो नहीं जाएगा वो, पढ़ाई के लिए बोलो तो नहीं पढ़ेगा, लेकिन उसको घास काटने बोलो तो घास काटने जल्दी चले जाएगा, है? तो ऐसा ही है, हमको कभी ज्ञान चिंतन और ज्ञान मूल्य पढ़ने में कोई बोले तो इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन बोल दे कोई उसी समय चलो पिकनिक, तो फिर देखो कहाँ से एनर्जी आ जाती है। माइंड को हमें देखना है सूक्ष्म रूप से, माया हमारे माइंड में भी बार करती है, उसको हमें एक्टिव करने की, क्योंकि लंबे समय तक नहीं चलना चाहिए, एक्टिव करने की वो होनी चाहिए। तो दूसरा, तीसरा क्या था, कि हमें कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। चौथा है डोमिनो इफेक्ट। एक डोमिनो इफेक्ट होता है, हमारा लक्ष्य थोड़ा बड़ा, हम बड़े लक्ष्य को सामने रख देते हैं, बाप समान समान संपूर्ण। तो लक्ष्य बड़ा रखना अच्छी बात है, लेकिन लक्ष्य के लिए प्रयास, छोटे छोटे प्रयास से ही सफलता मिलती है। एक बार क्या हुआ, गांव में दो लोगों को ठेके पर दिया गया कि पेड़ काटने। तो एक व्यक्ति जो था ना, उसने क्या किया, टहलियों को काटा और वैसे वैसे काटता है, डालियों को काटा, फिर तना को काटा, फिर नीचे काटा। और एक व्यक्ति ज्यादा नया नया था, थोड़ा कि जल्दी जल्दी मैं काट लूंगा तो ज्यादा काट पाऊंगा, ज्यादा पैसे कम, तो उसे जड़ से ना नीचे से काटना शुरू किया उसने, बड़े उससे, और वो पेड़ काटा उसी के ऊपर गिर गया। तो कभी कभी बड़ा लक्ष्य रखने से लोड हैवी हो जाता है, इसलिए छोटे 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 हमें करने चाहिए। तो डोमिनो इफेक्ट जो होता है, वो डोमिनो मतलब वो कौन था, वो शकुनी, शकुनी के पास थे ना पासे, वो उसको कहते हैं। तो वो एक क्लिप भी देखी होगी वीडियो में कि छोटे छोटे डोमिनो रखे रहते हैं, बढ़ता जाता है साइज उनका डबल, और एक को गिराते हैं तो बहुत बड़ा भी गिर जाता है। तो हमें पुरुषार्थ के लिए छोटे छोटे प्रयोग करने हैं, ड्रिल करनी है ना। एक घंटे का टारगेट ना रखें कि एक घंटे बैठ के योग करके पूरा कर दें, ऐसा नहीं, एक घंटे में एक मिनट का टारगेट। तो इसके लिए युक्तियां रचनी है, जैसे जितने बार भोजन कर रहे हो उतने बार पहले मुरली पढ़ना है, ऐसे कुछ अच्छे गहरे और नियम बनाने हैं अपने लिए। पानी पीना है तो एक सेकंड के लिए ड्रिल कर लिया, याद कर लिया, या स्लोगन को याद कर लिया, मूल्य के कोई भी पॉइंट को याद कर लिया, उससे याद बार बार रिवाइंड करने से मन शक्तिशाली होता है, और मन शक्तिशाली होगा तो योग में आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, है ना। और जब कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी तो आपको योग में ही सब कुछ समाया है, चिंतन भी योग में आ जाता है, नए नए आपको कुछ आइडियाज चाहिए वो योग में आ जाते हैं, और योग में नया अनुभव ही होगा, आपको पुराना अनुभव नहीं होता है कभी भी, योग में नया ही अनुभव होगा। तो ये होगा। फिर लास्ट है एनिमी, अपने शत्रु को पहचानना है, कमी कमजोरियों को पहचानना है और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेना है। हर किसी की कमी कमजोरी अलग अलग है ना, तो उसके अनुरोध एक्शन लेना है। अच्छा, ओम शांति।
माया महाठगिनी हम जानी, माया महाठगिनी हम जानी, निर्गुण फास लिए करे डोले, निर्गुण पास लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, माया महाठगिनी हम जानी, माया महाठगिनी हम जानी। केशव की कमला हुए बैठी, शिव के भवन भवानी भवानी, शिव के भवन भवानी, पंडा के मूर्ति हुए बैठी, पंडा के मूर्ति हुए बैठी, तीर्थ में भई पानी,